कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आप सबके? आज एक बार फिर हमने अपने साथ इमरान हुसैन को बैठा रखा है। इमरान को हमने आज अगवा किया है, और आपने आज तक शायद बचपन में टार्जन की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन हमारे पास आज दावा के टार्जन इमरान है, और आज हम इमरान की कहानी सुनना चाहते हैं। यानी इमरान को मैंने आज आकर राजी किया है कि भाई तुम अपना सफर मुझे बताओ कि कैसे एक डिजाइन इंजीनियर जो मगरबी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, जिसकी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ है, उसने अपनी सारी जिंदगी दावत दीन के लिए वक्फ कर दी है और इसी काम में लगा हुआ है, तो क्या ऐसा है? और मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान जो दीन को शऊर के जरिए पाता है ना, वो शकूक की घाटियों से गुजरता हुआ वहां तक पहुंचता है। फिर वो चाहे मैं हूं, चाहे हमजा जोर्जेस हों, चाहे सबूर हों, चाहे इमरान हुसैन हों, आप किसी का भी नाम लें। तो इसी हवाले से आज मैं इमरान से बात करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम इमरान।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अजीम भाई,
कैसे मिजाज हैं भाई?
ठीक ठाक, शुक्रिया अल्लाह का। बस टार्जन कह दिए, अभी देख रहा था कपड़े तो पहने हुए, शुक्रिया अल्लाह का।
ये टार्जन जरा बापर्दा किस्म का है, शरई टार्जन है,
चलेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे?
अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान, सब कुछ बेहतरीन की जानिब जा रहा है, अल्लाह ताला ने हमेशा खुशबाश रखा। तो इमरान, मैं ये चाहता हूँ बजाय इसके कि हम जरा वो हर वक्त जो एक मंतकी और मुश्किल बातें और दावा के बारे में और इन सब के बारे में, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या सफ़र रहा। और सच्ची बात यह कि मैं खुद इस बारे में बड़ा जो है ना वो इंक्विजिटिव हूँ, जैसा कहना चाहिए, क्यूरियस फील करता हूँ अपने आप को। बाकी लोगों का तो फिर किसी हद तक पता है, तुम्हारे बारे में मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे बताओ।
अच्छा चलिए, स्टोरी तो छोटी करके बताता हूँ थोड़ी सी। तो शुरुआत में चलें तो बिल्कुल पीछे चले जाएं, तो बचपन में तो जैसे हर कोई पाकिस्तानी बच्चा बड़ा होता है पाकिस्तानी।
और ये बचपन कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर?
इंग्लैंड में, ज्यादातर इंग्लैंड में ही है, तो बड़ा इधर हुआ मैं। अच्छा। कभी कभी पाकिस्तान चले जाते थे हम फैमिली के साथ।
हाँ, जो यहाँ के
साल दो साल स्टैंडर्ड जो होता है,
जो दो साल में एक दफा,
बस वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होती है।
सही।
तो यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, तो टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली, मीनिंग जैसे थोड़ा सा दीन, मतलब जुमे का पता हो गया, रोजों का पता हो गया,
मौलवी साहब से सिपारा सीख लिया है, तजवीद थोड़ी सी।
हाँ, ये चीजों बिल्कुल जनरली स्पीकिंग, तो काफी सेक्युलर लिबरल एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो उसका ये भी मतलब था कि मैंने कभी दीन की तरफ इतना रुजू नहीं किया, इतना मैं उसके ऊपर फोकस नहीं मैंने किया
बस
कभी।
यानी जैसे हमारे यहाँ होता है कि सब कर रहे हैं, हमारा एक कल्चर है, तो चलो हम भी किए
ऐसे ही, जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। सो स्पेशली वेस्ट में बड़ा होना इस एनवायरनमेंट में,
और मेरे ख्याल से ये शायद पाकिस्तान में इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है कि यहाँ पर जिस कल्चर में आपका ब्रॉट अप हो रहा होता है, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, वो जो बच्चों से मकालमा कर रहे होते हैं, उसका क्या मामला?
जो दिमागों में हमारे, हम देख लें जो पिक्चर बनी हुई है कि यार यूके की और अमेरिका की जो लाइफ है, द अमेरिकन ड्रीम जिसे कहते हैं, यार वो ये लोग बड़े स्पेशल हैं यार, इनके लिए इतने प्रिविलेजेस हैं, इतना कुछ करते हैं, इतनी ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह में बड़े होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, मैं यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, और मैं बता रहा हूँ इतनी भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना? इट्स लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो मैं, जैसे मैंने कहा, लिबरलिश टाइप ऑफ बैकग्राउंड से हूँ, दीन की तरफ कोई मेरा फोकस नहीं था, मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस्लाम की तरफ।
तो नमाज़ अगर आप पढ़ते थे क्या? नहीं पढ़ता था
नमाज भी नहीं पढ़ता था, बस इतना पता था कि इस्लाम है।
यानी अब्बू अम्मी का मजहब है इस्लाम, exactly, तो मेरा भी इस्लाम है।
उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, उन्होंने जो उनका उनके फर्ज थे, मुझे कुरान भी उन्होंने भेजा पढ़ने के लिए, कुरान दो बड़ी मैंने खत्म किया, जो स्टैंडर्ड चीज होती है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह उनको जजा दे इसके लिए। लेकिन जो दीन का जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, जिन जो हर एक मुसलमान को पता होने चाहिए, वो मुझे सारे नहीं थे पता, ठीक है ना? और ज्यादा उनकी गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ही नहीं दिया उन चीज़ों की तरफ,
उस तरफ
इतने डिस्ट्रैक्शंस थे, ठीक है ना? वेस्ट में स्कूल जाना, फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन एक्सेट्रा।
तो यहाँ पर वो नारा है ना, योलो, यू ओनली लिव वंस,
एग्जैक्टली,
सो लाइफ इज अ बिग पार्टी।
एब्सोल्युटली, वी लिव इन अ वेरी सेक्युलर relaxed environment, you know, and you just go with the flow, you do whatever everyone's doing. To main bhi aise bada hu, theek hai na? To bachpan to bahut khoobsurat tha, doston ke sath khelna jo regular hota hai, lekin jaise hi main 15-16 saal ki umar tak pahuncha, shayad 14-15-16 saal, tab
early teens, aapke
early teens, jab jo wo mauka nahi hota har insaan ki zindagi mein, jab pata hai bachcha jo bada hota hai usko pata chalta hai, yaar main insaan hu, maine marna hai, ये जब रियलाइजेशन,
अच्छा ये भी बड़ा अहम है इमरान, कि जब हम बड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि भाई 30 साल 40 साल के हो गए उसके अंदर, तो हमें ये 14 15 साल की उम्र ना बहुत छोटी लगती है, अरे ये तो बिल्कुल बच्चा है, लेकिन यही वो एज होती है जब एक यंगस्टर का दिमाग चलना शुरू होता है और उसके जहन में ये जो है ना सवाल पैदा होते हैं।
हर इंसान का डिफरेंट वक्त होता है, कोई कोई लोग होते हैं 12 13 साल की उम्र में ये चीजें सोचने लग पड़ते हैं, जो रियलिटी व्हेन इट सेट्स इन एंड हिट्स यू, जब पता चलता है ना अच्छा लाइफ इज अ ड्रीम, यू नॉट हियर फॉरएवर, आप हमेशा के लिए नहीं जिंदा रहने लगे, आपने मरना है, आपने आगे जाना है। वो जो पहली बार जब हिट करता है ना, वो काफी जोर से झटका लगता है इंसान को। तो मुझे काफी अर्ली हुआ था ये, आई मीन 14 15, मे बी 14 ईयर्स ओल्ड आई थिंक।
क्या वजह हुई, यानी बस ऐसे
वैसे ही मैं जैसे नॉर्मल बच्चे बड़ा हो रहा था, और मुझे एक दिन बस मुझे ये सोचे आने लग पड़ी, यार मैं इंसान हूँ, यू नो आई एम मोर्टल, आई एम गोना डाई, मैंने मरना है, सब मरते हैं, मरने के बाद क्या होगा, जाना कहाँ है, या मुझे तो लग रहा था यही जिंदगी है, यही सब कुछ करना है, मैं तो इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ।
तो यानी ये जो तुम्हारे जहन में सोचे पैदा हुई, इसका कोई पस मंजर तुम्हें याद नहीं आता, मुझे बस सिर्फ ये एक ऐसी चीज है कि एक रियलाइजेशन
अभी 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 जब देखता हूँ ना मैं पीछे, मैं अभी रियलाइज करता हूँ कि ये एक वेरी नेचुरल प्रोसेस है, हर इंसान इसमें से गुजरता है किसी ना किसी वक्त पे जिंदगी में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे जाना है, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, ये जो सवाल है हर इंसान पूछता है। बस ये होता है, कोई कोई लोग होते हैं थोड़ा लेट होता है उनके लिए, और कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत आसानी से ना कहते हैं ये कारपेट उठाओ उसके नीचे से ना उसे ब्रश कर दो,
मैं ये छुपा दो। मैं सोच रहा था कि जाहिर है जिस तरह तुम बता रहे हो उसी तरीके से मेरे साथ भी ये मामला हुआ कि जब हम कुरान हकीम पढ़ते हैं, हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो पूरी स्टोरी समझ आती है जिसमें वो एक इंटेलेक्चुअल जर्नी से गुजर रहा है। वो कह रहे हैं कि क्या ये सितारे खुदा हैं, क्या ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, फिर वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि ये तो सब निज़ाम में जकड़ा हुआ है और इस निज़ाम को चलाने वाला जो है वो असल में खुदा है। तो ये थॉट प्रोसेस एक जानिब तो ये होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग नजर आते हैं हमें जो इन बातों को, वही तुम्हारी वाली बात के बस ब्रश अप कर दिया उसको और उसके ऊपर कुछ गौर ही नहीं करते, 50-50 साल के हो जाते हैं।
कोई कोई लोग होते हैं जो उस चीजों को इतनी आसानी से,
लेकिन जहन में पैदा उनके भी होता है।
हाँ, हाँ, होता है, सबके होता है,
बस कोई वो उससे आंखें बंद कर लेते हैं, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है ना, तो अपने आप को वो कुछ पोल पट्टी पढ़ा कर मुतमइन कर लेना,
बिजी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं नहीं कर सकते ऐसे, वो उसको बस उस वो फोकस बन जाता है।
अच्छा एक इधर मैं एक चीज पे तुम्हें टोकूं भी कि जो मकसद है, जो तुमने कहा ना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मेरा मकसद क्या है, इसके बारे में भी लोग अपना मकसद खुद इन्वेंट करते हैं।
सही बात है।
यानी एक तो होता है ऑब्जेक्टिव मकसद, यानी मैं कहता हूँ भाई मेरी आंखें किस लिए, तो सब कहेंगे देखने के लिए। मैं कहूंगा कि भाई मेरे कान किस लिए, सब कहेंगे सुनने के लिए। कोई दूसरा जवाब आपको इसका नहीं मिलेगा कि यही इसका प्राइम मतलब है। लेकिन हम पूछते हैं भाई तुम्हारा मकसद क्या है, ठीक है, इंसान से किसी पूछते हैं तो वो या तो हक्का बक्का खड़ा रहता है
बस,
या फिर वो अपना कोई मकसद क्रिएट कर लेता है, यानी एक सेल्फ मेड अपने आप को बनाने के लिए, कि कोई कह रहा भाई मेरा मकसद तो चैरिटी करना है और मेरा मकसद तो जो है ना वो मिसाल के तौर पे साइंसदान बनना है। तो सारे काम अच्छे हैं ये, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव मकसद,
ये मकसद हम अपने आप को देते हैं, ये हम अपने आप को बहलाते हैं, बताते हैं यार मेरा मकसद एक्स वाई या जेड है, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, चैरिटी वर्कर, ये एक तरफ से अपने आप को, अपने आप से झूठ बोलने के बराबर होता है, क्योंकि आप अपने यू मेकिंग इट अप एज यू गोइंग अलोंग, ठीक है ना। लेकिन आपका आपका ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है, वो आपसे नहीं मिलेगा आपको। और ये भी आपने इंटरेस्ट, आपने कुरान की बात की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की, जो इसीलिए कुरान, इंसान का कुरान से जो ताल्लुक है ना, शुरू से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसे सवाल पैदा होते हैं, इंसान का दिमाग इस लेवल पर चलने लगता है, तो कुरान उसको ना उसके लिए क्या कहते हैं, एक मेडिसिन, एक क्योर, एक पट्टी के जिसे मरम पट्टी करते हैं इंसान,
शाफी जवाब जो है ना,
शिफा होती है। एग्जैक्टली, अल्लाह कहता है शिफा है कुरान, उसके लिए, उस इंसान के सब सवालों के जवाब उसके अंदर है। लेकिन जिस इंसान के पास कुरान ना हो, जैसे मेरे पास नहीं था, पढ़ा हुआ था मैंने अरबी में लेकिन समझा नहीं था कभी मैंने, तो जो जिस इंसान के पास कुरान ना हो, वो बिल्कुल ही ऐसे होता है जैसे दरिया में ना बंदा बस स्विम कर नहीं सकता, तैर सकता नहीं, लेकिन बह रहा है, मर भी नहीं रहा, ठीक है ना, लेकिन जिंदा भी नहीं है, बस वो एक पैनिक स्टेट में है, हाथ मार रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता चल रहा उसको। मेरा ये हिसाब था, और मेरा अजीम भाई, मैं ऐसे कई साल मेरा ऐसे रहा है, 5 6 7 पता नहीं 10 साल शायद, अ डेकेड आई वाज लाइक दिस,
किसी कश्मकश में फंसा हुआ था।
अब एक्सटर्नली तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसे चलता रहूं जैसे लोग चल रहे हैं, और ऐसी जो अंदरूनी तकलीफ होती है ना, जो जो रूह की तकलीफ होती है, वो नजर नहीं आती इंसान को. बाहर से तो ऐसे लगता है सब चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे नहीं होता कि किसी को हार्ट अटैक हो गया. ऊपर से हमारे क्या कहने, हमारे कल्चर में तो हार्ट अटैक कॉमन हो गया. अभी किसी को होता है तो कोई ज्यादा सोचता भी नहीं है. ऑलमोस्ट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, अनफॉर्चुनेटली इट्स बिकम समथिंग लाइक दैट, राइट. लेकिन वो ऐसी एक्सटर्नल चीज़ नहीं होती जो तकलीफ अंदर की होती, जो 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 दिल की तकलीफ होती है, वो कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता सही से. तो कितने साल मैं डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में निकाले, सोचता रहा क्या इन सवालों के जवाब क्या हैं, कहाँ से मिलेंगे. एक चीज़ मुझे पता चल गई कि मुझे मेरे खुद से नहीं आएंगे ये सवाल. मैं बस क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप से झूठ बोल सकता हूँ.
नहीं तो तुम उस कंडीशन में जब उस डिप्रेशन से गुजर रहे थे, तो उस वक्त तुम अपने आप को क्या तसव्वुर करते थे? क्या तुम उस वक्त अपने आप को एक मुसलमान मानते हो?
मेरा ताल्लुक यही था दीन के साथ. अगर मुझे कोई पूछता ना तो कि आप खुदा में मानते हैं, मैंने कहता हाँ हो सकता है, लॉजिकली मेक सेंस दैट देयर इज समथिंग आउट देयर दैट क्रिएटेड एवरीथिंग. लेकिन उस खुदा का इस जिंदगी से, इस कायनात से कोई ताल्लुक है? उसने ये चीज़ें किसी मकसद से बनाई है? मैं कहता नहीं. सो आई वॉज लिविंग लाइक जो कहते हैं ना नेचुरलिस्ट होते हैं, कि सब कायनात के पीछे टीलियोलॉजी नहीं है, मतलब देर इज नो पर्पस बिहाइंड एनी थिंग. ही क्रिएटेड इट बट ही लेफ्ट इट टू बी विदाउट एनी पर्पस ऑफ मीनिंग. मेरा ऐसा था
डीएस्ट वाली अप्रोच होती है,
डीएस्ट या जो एक्सिस्टेंशलिस्ट की अप्रोच होती है, वो था मेरा हिसाब. ठीक है,
ये भी तो होता है ना कि लोग खुदा को ये तो मान रहे होते हैं कि भाई बनाया है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज रिलीजन कहते हैं यार ये जितने भी मजहब है ना, ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए और इंसानों को काबू रखने के लिए जो है वो बना लिए उन्होंने. तो यानी तुम्हारी ये कंडीशन
नहीं, मेरी वो भी नहीं थी. जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किर्केगार्ड एक फिलोसफर था, ठीक है ना, वो भी एग्जिस्टेंशलिस्ट था. एग्जिस्टेंशलिस्ट मतलब है वो लोग जो कहते हैं कि हम एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं लेकिन हमारा कोई मकसद नहीं होता, कोई एसेंस नहीं होता. ठीक है, वो ये मानता था, लेकिन खुदा में भी मानता था. कोई कोई एग्जिस्टेंशलिस्ट थे जो एथियस्ट थे. ठीक है ना, अभी वो था, मेरी वैसी पोजिशन थी कि मैं खुदा में कोई पूछता मानता हूँ कि नहीं, मैं कहता हाँ मानता हूँ, लेकिन दुनिया का मकसद क्या है, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, कुछ मकसद नहीं है. इसलिए मुझे जवाबों के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे मुझको. तो मैंने कभी ये भी नहीं, मैं इतना दूर था इस्लाम से, कोई मैंने ये सोचा भी नहीं कि शायद ये इनके जवाब मेरे कबर्ड की शेल्फ में पड़े हुए हैं, मैंने कभी खोल के नहीं देखा कुरान.
वो तो कुरान हकीम को तो अनफॉर्चुनेटली हमने बस सिर्फ सवाब का एक किताब बना लिया ना, कि यानी दुल्हन के सर पे रख दिया रुखसत करते हुए, उसका जो है ना वो एक तस्वीर लगा दी अपनी दुकान में कि बरकत होगी, तावीज बना के पहन लिया. लेकिन ये हम नहीं सोचते कि ये हिदायत की किताब है, ये हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई थी, तस्किया करने के लिए आई थी, हमारी फिक्र की तस्कीर करने के लिए आई थी, और वो समझे बिना कैसे मुमकिन.
और यही तो मसला है अजीम भाई. देखिए कितने लोग हैं जो इस कंफ्यूजन से, इन सवालों से बैटल कर रहे हैं, तकलीफ हुई है उनकी बहुत ज़्यादा, ये सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ. इनके सवाल सिर्फ कुरान से मिलेंगे. और मैं आपको ये भी, कुरान तक जाने से पहले मैं आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से इस बात को देखते हैं. What are the logical implications of atheism? कि मंतिकी जो implications हैं atheism के, वो क्या हैं इंसान की जिंदगी के ऊपर? अगर आप खुदा को deny करते हैं, आप naturalist atheist हैं, ठीक है ना, उसका मतलब है सब कुछ एक accident है. ठीक है ना, बस atoms और molecules कितने करोड़ों सालों से एक दूसरे के साथ collide कर रहे हैं, और उसकी वजह से सब कुछ
आ गया. इस बन गया है,
exactly. इसका मतलब क्या, everything is an accident. You, me, everything in existence is an accident.
वो उसको इस जुमले को भी deny करो, नहीं हम accident नहीं कह रहे, लेकिन overall ये
कुछ भी नहीं, it is no meaning behind it.
चाहे वो evolution कितने ही sophisticated बता दें उसको, लेकिन
evolution तो बाद में आता है. मैं जो कायनात का origin से, it's all accident हो.
यानी big bang जो है,
it's all accident हो, सब accident है, ठीक है ना?
Over big bang का कोई जिक्र ही कोई नहीं है.
तो इस लिहाज से, इस नजरिए से आप देखें, तो इसका मतलब क्या है? There is no purpose. There is no objective purpose. जैसे आपने कहा ना objective purpose. There is no value in life. Meaning, मुझ में और ये plastic bottle में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं. Naturalist और existential, atheist और naturalist के हिसाब से, ये भी बस एक atoms की बनी हुई एक formulation है, और मैं भी एक अलग atoms का बना हुआ formulation हूँ, बस.
और यानी चाहे वो कितना ही खूबसूरत जज्बा हो, जैसे हम ममता का जज्बा कहते हैं कि माँ की जो मोहब्बत है,
ये बस ideas है,
ये तो बस एक chemical composition का नाम है,
ख्वाबी सोचे,
दिमागी लोचा है,
बस यही है. At the end of the day क्या है, बस atoms and molecules whizzing around colliding into each other, different arrangements of matter.
انسانیت کی شناخت ہی
ختم ہو جاتی ہے.
فطرت جو ہے نا وہ ایک کیمیکل کمپوزیشن کا نام ہے.
فطرت کی آواز دب کے
ایجاد کر رہے ہیں کہ بھائی نئی مورلز تو ہم خود بناتے ہیں اور مورلز تو ہمارے. بھائی کیسے
یار, جو یہ جو کانٹرڈکشن ہے ایتھیزم اور ہیومنزم کا, یہ بات یہ تو وکھرا ویڈیو اپنے اس ویڈیو میں نہ
اس پر الگ سے بات کریں گے,
لیکن اس کو پارک کر دیتے ہیں ابھی کے لیے. لیکن جنرلی اسپیکنگ دیئر از نو پرپس, آبجیکٹیو پرپس, دیئر از نو ویلیو, دیئر از نو میننگ, دیئر از نو ہیپینس, ٹرو ہیپینس. کیسے خوشی انسان کیسے صحیح میننگ فل جو ہوتی ہے خوشی کہاں سے ملے گی انسان کو جب اس کے اسے ان سوالوں کے جواب ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ابھی سو جاتے ہیں فرض کریں, اٹھتے ہیں پانچ منٹ کے بعد, اب آپ پلین کے اندر ہیں, اڑ رہا ہے پلین, ٹھیک ہے نا, اب دیکھتے ہیں کیا سوال میں کون سے دماغ میں سوال آئیں گے, یار میں ایسے یہاں پہ کیسے پہنچا ہوں, کس نے مجھے یہاں پہ بٹھایا.
یعنی وہ بھلے آپ بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو
لیکن آپ کو کاکپٹ میں بیٹھ جائیں,
آپ کو بہترین ڈرنک سرو ہو رہے ہو لیکن آپ اس جہاز میں کھونے کے بجائے یہ سوچیں گے یار میں اس جہاز میں پہنچا کیسے.
اب ڈسٹریکٹڈ ہو سکتے,
اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ یہ جہاز جا کہاں رہا ہے.
ایگزیکٹلی, اب ڈسٹریکٹڈ ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, یار بڑے مزے کی کرسی ہے ٹھیک ہے نا, اور یہ کھانا بڑے مزے کا, ندیم بھائی بیٹھے ہوں جہاز میں تو کہیں یار کھانا بڑے مزے کا ہے, ٹھیک ہے نا, فائیو اسٹار روٹی
اور بریانی منگا,
بریانی بٹر چکن کیا نہیں کھا. جب کھا تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ بندہ ہو جاتا ہے, تھوڑی سی ٹیمپرری خوشی ہوتی مل جاتی ہے, لیکن جتنی دیر تک اس انسان کو یہ جو فنڈامنٹل سوال ہے میں یہاں پہنچا کیسے ہوں, جہاز جا کہاں رہا ہے, مجھے یہاں پہ بٹھایا کس نے, یہ سوالوں کا جواب جتنی دیر نہیں ملے گا انسان کبھی صحیح دل سے خوش نہیں ہو سکتا.
اور یہی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں, ہم یہاں آتے ہیں یہاں پر مال کمانے کے لیے, اچھی جاب, ایک اچھا گھر لے لوں, ایک خوبصورت عورت سے شادی کر لوں, بچے پیدا کر لوں, اس چمک دھمک میں ہم کھو جاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ دنیا میں ہم آئے کیسے, کیوں آئے, ہمارا مقصد کہاں ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم روز دیکھ رہے ہیں ہر کوئی مر رہا ہے جا رہا ہے تو یہ ہم جا کہاں رہے ہیں.
ایگزیکٹلی, اور چیزیں کہاں لے کے جانی ہے ہم نے جو جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا, اور میرا یہی سچویشن.
ایک بات عمران مجھے یہ بھی بتاؤ, اس دوران تمہاری جو عمر تھی یہ تو پارٹی کی عمر ہوتی ہے یار.
ہاں جی,
تو تم نے پارٹی شارٹی نہیں کی کیا؟
اچھا, پارٹی کی عمر ہوتی ہے, پارٹی کی عمر ہوتی ہے
یار. ہاں, وہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ
پچاس پچاس سال کے 80-80 سال کے انکلز کو دیکھا پارٹی.
بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مجھے ٹی وی چینل میں بلایا گیا تھا, ایک مارننگ شو تھا سما ٹی وی کا نا, اس کے اندر تو وہ ہنسی مذاق ہو رہا تھا, اس میں نے ایک جملہ کہا کہ مرد تو فطرتن کما رہا ہوتا ہے اور جس کو موقع مل جاتا ہے تو اللہ معاف کرے وہ آوارہ بھی ہو جاتا ہے. اس میں تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ, لیکن تم نے کچھ نہیں کیا.
اس میں بھی شو کریں گے مجھے لگتا ہے, یہ ندیم بھائی کا ٹاپک سوٹ بہت کرے گا, یہ شو ضرور کرنا آپ انشاءاللہ.
پارٹی بوائے.
ہاں, پارٹی بوائے ندیم بھائی, پارٹی بوائے. اچھا, ویسے یہ میرا سچویشن تھا. ابھی اب سوچتے کتنی مشکل, دس سال جو میں نے جو بھی جتنے بھی سال گزارے ہیں اس سچویشن کو, کتنا مشکل وقت تھا, کیونکہ یہ جو اندرونی جو میری اسٹیٹ تھی بہت مشکل تھی, انگزائٹی, ڈپریشن, پین, میں کسی کو بتا نہیں تھا سکتا. ٹھیک ہے نا, لمبی اسٹوری ہے, لیکن ایونچولی سولوشن کہاں پہ مجھے ملا, میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں عظیم بھائی, 100% سچ ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں ایک دن, اللہ نے مجھے اسلام کی طرف میرا رجوع کرایا, میں نے اسلام کے بارے پڑھا, اس کا جو لاجیکل ریزنز, پریکٹیکل ریزنز, یو نو, جو بھی اسلام سب کچھ سکھاتا ہے میں نے سب دیکھا. جو اسلام کا میسج تھا, جو انسانی فطرت ہے اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے بالکل صحیح طرح سے, جیسے دو پیس پزل کے نہیں ہوتے فٹ ہو جاتے ہیں پرفیکٹلی. لیکن جو ایتھیزم ہے وہ انسان کو ایسی سچویشن میں ڈال دیتی ہے کہ جو فطرت انسان کی ہوتی ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے بالکل.
ٹھیک ہے, یعنی اس پر جو ہے نا, جب وہ عقل اور شعور کی بات کرتے ہیں نا تو فطرت کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں.
ایبسولیٹلی
ٹھیک ہے, یعنی
وہ اندر چلا رہی ہوتی ہے,
وہ رہتی ہے, یعنی اس کے اوپر وہ ایک ریشنل خول چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ایک مشین کی طرح جیسے ایکٹ کرنا چاہیے نا, کہ لاجک 0-1-0-1 اس پر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن انسان صرف ایک عقلی وجود تو نہیں, اس کا ایک جذباتی وجود بھی ہے, اس کی بہت ساری نیڈز ہیں.
ایگزیکٹلی, تو میرا یہی سچویشن تھی, تو میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آئی, لیکن میری جو ڈپریشن تھی, جو جس میں کشمکش میں پڑا ہوا تھا نا, یہ کہیں پہ نہیں گئی, وہی تھی. اس کا سولوشن کیا تھا, میں ایک دن قسم عظیم بھائی میں سجدے میں گرا. ٹھیک ہے نا, سجدے میں گرا, سب کچھ میں نے ٹرائی کر لیا تھا, سب چیزیں دیکھ لی تھی, کچھ بھی مجھے سلوشن کہیں بھی نہیں مل رہا تھا. سجدے میں گرا ہوں, میں نے اللہ سے دعا کی ہے, یا اللہ تو نے مجھے اس دین کی طرف لے کے آئے ہو, مجھے سب آنسرز مل رہے ہیں, مجھے دکھا رہے ہو آپ سب آنسرز, قرآن میں مل رہے ہیں مجھے, یہ جو انگزائٹی ڈپریشن اس کو مجھ سے دور کر لو. اس سجدے سے جیسے میں اٹھا ہوں ایک دم سے ختم,
اللہ
اکبر, اس کے بعد نہیں واپس آئی یہ چیز. ٹھیک ہے نا,
تو یعنی وہ جو سالوں سے تمہیں ایک ڈپریشن اور انزائٹی کی شکایت تھی,
ایک دم سے سجدے میں اٹھا ہوں,
سجدہ اور
ختم, بالکل اسی وقت ختم.
وہ اقبال کا ایک شعر ہے, گویا وہ کسی اور تناظر سے ہے, لیکن اس وقت بھی میرے خیال سے اسے سنایا جا سکتا ہے, کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے हजार सजदों से देता है आदमी को निजात।
मेरा यही बस सिचुएशन था भाई।
तो यानी वो जहां भी तुम चीजें ढूंढ रहे थे वो भी तो सजदा ही है ना। सजदा सिर्फ माथा जमीन पर लगाना तो नहीं है, यानी जिस चीज अपनी ख्वाहिश के सामने भी कोई सरेंडर कर रहा है तो बेसिकली वो अपनी ख्वाहिशात के सामने।
पता यह लिंक क्या है, जैसे मैंने सही दिल से अल्लाह के सामने सर झुकाया ना, अपने आप को झुकाया, जिस दिन मैंने अपने जो मेरा जिंदगी का, जो हर इंसान की जिंदगी का मकसद होता है उसके साथ मैं बिल्कुल लाइन में आ गया था, ठीक है ना, इन लाइन विद इट। और जब इंसान अपने जिंदगी के मकसद के साथ बिल्कुल सही अलाइन हो जाता है ना, उसमें जो जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दिल को जो सुकून पहुंचता है ना, वो कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अल्लाह ने क्या कहा हमें कुरान में, वो मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह ने हमें किसी भी मकसद से नहीं बनाया है, सिर्फ इसलिए उसने उन्होंने हमें बनाया कि हम उनकी उसकी इबादत कर सकें।
बिल्कुल। और यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें अपने नाजरीन को ये बताना भी चाहिए कि इबादत से बाज लोग सिर्फ ये तसव्वुर कर लेते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम इबादत है। इबादत सिर्फ ये नहीं है, इबादत का एक हिस्सा है ये, बाकी इबादत हमारी 24 घंटे की जिंदगी है। आप साइंटिस्ट बनते हैं तो जो साइंस का आप काम करेंगे बीइंग अ मुस्लिम, गॉड कॉन्शियस होकर, तो वो सब इबादत है।
Absolutely.
ठीक है, आप इंजीनियर बनते हैं, आप शादी करते हैं, आप कोई भी काम, हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये सारी इबादत का एक्ट है अगर हमारी नीयत जो है ना वो दुरुस्त हो। जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि इन्नमा अल-आमालुल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है, तो उस हवाले से जो है वो इबादत का मामला।
और मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, भले एथियस्ट हो या ना हो, कि इंसान अगर सही दिमाग से आराम से बैठ के सोचे ना अपनी जिंदगी के बारे और रियलिटी के बारे, और अपनी अक्ल सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो कंक्लूजन यही है उसमें उससे पहुंचेगा कि ये जो एथियज्म है, नेचुरलिज्म है, ये इंसान को खाली छोड़ देता है, empty. All you can do is you can go and fulfill your desires without any accountability.
बिल्कुल।
लेकिन आप very soon you'll realize, बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा, मैं सब desires पूरे कर ली यार, मुझे सुकून नहीं मिला।
यानी तुम इन desires से गुजरे हो।
कितनी चीजें यार, इतनी चीजें।
शराब और ये सारी
चीजें। Everything, like not everything but many things I tried and tested. बहुत सारी चीजें मैंने test की के यार।
Sorry to say यार, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। I know it is on the camera. कि शराब, ड्रग्स, इन चीजों में ढूंढा तुमने अपने आप को?
इन चीजों में जरूर ढूंढा मैंने अपने आप को। मैंने
यानी ये चीजें की, क्योंकि देखो मैं पूछ
मैंने इन चीजों से मेडिकेट किया अपने आप को। लेट्स पुट इट दैट वे।
यानी ये एक चीज, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो के इख्तिताम की जानिब जाएं, ये एक बात मुझे बताओ इस जगह पे। हाँ, बाज लोगों का ये होता है कि यार ये मजहब भी जो है ना वो एक अफ्यून की तरह है, एक ड्रग की तरह है। तो जिस तरह ड्रग से आपको सुकून मिल जाता है, यू फील हैप्पी फॉर सम टाइम, इस तरह से शायद आप जब मजहब पे चलते हैं, इस्लाम पे चलते हैं, आपको उसका सुकून मिले, तो इट्स एक्टिंग लाइक अ ड्रग। लेकिन तुमने ड्रग्स यूज की, तुमने अल्कोहल यूज किया, और तुम्हें जो भी सुकून मिला वो टेम्पररी था।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन
क्या है वो,
यूजिंग समथिंग एंड फाइंडिंग टेम्पररी रिलीफ एंड डिस्ट्रैक्शन, एंड अडॉप्टिंग समथिंग व्हिच इज इन लाइन विद योर नेचर, योर फितरा, and finding true peace and tranquility because you're living according to your purpose.
Subhanallah.
मैं आपको example दे देता हूँ, and I think it summarizes this. गाड़ियाँ बनती पेट्रोल पे चलने के लिए, अगली बार आपका टैंक जब खत्म होता है उसमें पानी डाल के देखें क्या होता है, गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। When we are in line with what we were created to do, we will find peace and tranquility and we will prosper.
Subhanallah.
लेकिन जब भी हम अपनी जो जिस वजह से अल्लाह ने हमें बनाया उससे हम डिविएट करेंगे ना, तो हमें खुद पता चल जाएगा।
ड्रग्स और ये सारी चीजें आपको टेंपरेरी रिलीफ देती हैं, डिविएशन है,
लेकिन बाद में और काम खराब कर देती
हैं। और जो दीन है जिस पर आप अपनी फितरत को अलाइन पाते हैं, अकल, शऊर, सब एक जगह पर खानों में फिट हो जाता है, तो उससे आपको हकीकी सुकून, ट्रैंक्विलिटी नसीब होती है।
एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रूफ।
अल्हम्दुलिल्लाह।
जब पजल सब आपके लिए सब डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही, उससे ज्यादा आपको
ये मसला पता है क्या, ये बात ना आप किसी को समझा नहीं सकते। यानी ये जो सुकून है जो एक मोमिन अपने अंदर महसूस करता है, यानी भाई देखे, मैं मिसाल के तौर पर अपने आप तुम्हें बताता हूँ कि मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, और मेरे ख्याल से अगर कोई एक ऑनेस्ट एथियस्ट भी मुझे देख रहा होगा तो वो ये कहेगा कि यार ये अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूँ कि जो सुकून दीन इस्लाम से हासिल होता है आपको, वो सुकून प्राइसलेस है, और वो सुकून धोखा नहीं है। यानी ये ड्रग से जो मिला देते हैं
Absolutely.
इस तरीके का, यानी वो रूहानी सुकून भी है और वो इंटेलेक्चुअल सुकून भी है, यानी एक हार्मनी है।
Yes.
मेरे पास सवालात के जवाबात भी हैं, जो पूछे गए हैं, तो मेरी कहीं मंतक और मेरी अकल उसमें ये नहीं है कि मैं उसको जो है ना कारपेट के नीचे डाल रहा हूँ और उसको निग्लेक्ट कर रहा हूँ. नहीं, मैं उन सब चीजों को, क्योंकि हमें तो कुरान बोल ही रहा है फला याकलून, अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, फला यदब्बरून, पॉन्डर क्यों नहीं करते, तो वो तो है ही. और फिर जो एक स्पिरिचुअल जो हॉलो हो जाता है आदमी एथियस्ट बन के या इस तरीके के फलसफे अपना कर, वो हॉलोशिप भी नहीं रही है. और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सबसे बड़ा प्रूफ
exactly. है. खुद जो भी ये इंक्लाइन हो रहे हैं, अपने आप को एथियस समझते हैं, ट्राई कर लें, ठीक है ना, शराब में देख लें, ड्रग्स में देख लें, रिचर्ड डॉकिंस की टाई देख के खुश होने की कोशिश कर लें, ठीक है ना, ये सैम हैरिस का ब्लेजर देख के देखें, अच्छा हाँ. मैंने अपने आइडल को देख लिया, बड़ा यार इससे मुझे सुकून पहुंच, कितनी देर सुकून मिलेगा
वो, ये तो रैशनल. आजकल तो यानी साइंटिस्ट अगर आप हैं तो आप अकलमंद हैं, ठीक है, अगर आप कोई और है तो शायद आप बेवकूफ.
इंशाल्लाह और भी वीडियोस करेंगे जहां पे विल डील विद ईच ऑफ दीस टॉपिक्स
इंशाल्लाह. इमरान, मेरे ख्याल से हमें अपनी गुफ्तगू का यहां पर इख्तिताम करना होगा, और इंशाल्लाह जो हमने मौजूआत अभी बात की हैं इस पर कई वीडियोस बनाने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहिएगा.
या मेरा अपना चैनल,
आप बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारा अपना ही
चैनल, अपने घर छोड़ के कौन जाता है.
तो जनाब, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम कर रहे हैं, लेकिन इख्तिताम से पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए. हर हफ्ते आपको वीडियोस मिलेंगी, ना सिर्फ इस डिस्कशंस की बल्कि जितने रैशनल सवालात हैं जो हमारे जहन में पैदा होते हैं, जो आपको बताए जाते हैं इनके कोई जवाब नहीं है, मज़हब इसको जवाब नहीं दे सकता, उन सब जवाबात पे हम इंशाल्लाह, उन सब सवालात पे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे. अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट अज़ीमुर रहमान उस्मानी को इजाज़त दीजिए. अस्सलामु अलैकुम.